मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। बाबा की मुरली रागिनी काए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। बाबा की मुरली रागिनी काए, अव्यक्त ये धारा दिल को छू जाए। क्रांति का ऐसा करिश्मा कहाँ, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। जीवन ये मेरा तेरा वरदान है, एक पल हो के जुदा जीना मुश्किल है। खोजू जहां में मैं तुम सा कहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा, प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का ये रंगीन अनुभव देख लो तुम भी जरा, प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए ये विमल जहां, मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ।
ओम शांति। कहां तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहां तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में रख यह भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, संसार की आत्माओं को इंतजार है, संसार की आत्माओं को एक मसीहा चाहिए, एक अवतार, कोई ऐसा पुरुष, युग पुरुष, जो उनकी आध्यात्मिक चेतना को जगा दे, उनका उद्धार करे। क्योंकि आत्माएं नीचे गिरी हुई है, उनको उठाना है, उनके दुखों को, पीड़ा को हरने वाला कोई तारणहार, कोई अवतार, कोई तीर्थंकर, कोई बुद्ध, कोई ईश्वर पुत्र, कोई गुरु, कोई सद्गुरु, कोई योगी, कोई महायोगी, कोई ज्ञानी, कोई महाज्ञानी, कोई सिद्ध पुरुष, कोई पैगंबर, पयंबर, कोई धर्मगुरु आ जाए और हमको उठाए। क्योंकि अंधेरा बहुत गहरा है, अंधकूप महाभयान, पार लगाने वाला तारनहार। और बाबा ने कहा है, वो तारनहार तुम हो, वो उद्धार करने वाले तुम हो, और तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। रहम दिल बन, फरिश्ता बन, सकाश दो, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा, फरिश्ते स्वरूप द्वारा सेवा। एक तरफ वो पहले भगवान का आह्वान करते थे, अभी आह्वान कर रहे हैं भगवती का, शक्तियों का, शक्तियों का आह्वान, भगवती का आह्वान। जैसे साइंस वाले दूरबीन से दूर का देख लेते हो, लेते हैं, वैसे तुम दूर का देखोगे। जैसे इन आंखों से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे तुम इन आंखों से स्पष्ट सब दिखाई देंगे। जैसे साइंस की शक्ति है लाइट, निखिलेश भाई, साइलेंस की शक्ति है डिवाइन इनसाइट, तो डिवाइन इनसाइट, अंतर्दृष्टि, ये साइलेंस की शक्ति है। तो रहम करो, सकाश दो, फरिश्ता स्वरूप इमर्ज करो, शक्तियों का स्वरूप इमर्ज करो। दुर्गा अर्थात शक्ति, लक्ष्मी अर्थात संपन्नता, धन, सरस्वती अर्थात ज्ञान, कला, काली अर्थात संहारी मूर्त, पार्वती प्रेम, फर्टिलिटी, सीता, राधा, गायत्री, शक्ति, अन्नपूर्णा, महाकाली, भुवनेश्वरी, जगदम्बा, कामाक्षी, मीनाक्षी, चामुंडा, चिन्नमस्ता, गंगा, कात्यायनी, महालक्ष्मी, वैष्णवी, भैरवी, ललिता, मतांगी, नवदुर्गा, रति, सावित्री, वराही, अदिति, अहिल्या, अनसुया, आर्या, भगवती, भूमि देवी, दक्षिणा, धरा, गंगा, हरिति, कितने नाम हैं, कालिंद्री, महामाया, माहेश्वरी, मनसा, नारायणी, तुलसी, वज्रेश्वरी, राजराजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी। भारत में भगवती कहा गया है, देवी कहा गया है, तो क्या करो, अमृत वेला सकाश दो। लिस्ट हमने बना रखी है, तो रोज अमृत वेला इसको बार बार चेक करना है। आज क्या बच गया, क्या छूट गया, सबसे पहले अपने शरीर से चालू करना है। प्यूरिटी की किरणें अपनी अपने शरीर को, पांच तत्वों को। दूसरा, सृष्टि में जाना है, आकाश हवा, धरती में उतरना है, धरती अग्नि जल, पांच खंड, पांच महासागर, पांच प्रकार की संसार की आत्माएं, दुखी आत्माओं को इमर्ज करके देखना है, वो अनुभव करे कि हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ब्रह्मा के लिए गायन है, लोगों को दूर बैठे ही साक्षात्कार हुआ, वैसे तुम्हारा भी साक्षात्कार होगा। तो उसकी प्रैक्टिस, साक्षात्कार ट्रेनिंग करनी है। उनको फील होगा, उनको अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा? हमसे बात हुई, हमने देखा एंजल्स का कितना गायन है, फरिश्ते आते हैं, मदद करके चले जाते हैं। उनको देवी का साक्षात्कार चाहिए। तो पांच तत्वों को सकाश, पांच खंडों को सकाश, पांच महासागर को सकाश, पांच प्रकार की आत्माएं, दुखी आत्माओं को सुख की, अशांत आत्माओं को शांति की, अपवित्र आत्माओं को पवित्रता की। जो आत्माएं अतृप्त है, प्यासी है, चाहे शरीर में या शरीर से बाहर, उनकी प्यास बुझानी। और जो भटक रही है शरीर में और शरीर से बाहर, दो प्रकार की है, दोनों दोनों, एक शरीर के अंदर भटक रही है, आत्मा शरीर में है और खोज रही है, आत्मा शरीर से बाहर है, शरीर नहीं मिल रहा है। दो आत्माओं को बड़ी मुश्किल से शरीर मिलता है, एक बहुत महान, बहुत श्रेष्ठतम, अत्यंत पवित्र, वो गर्भ ढूंढती है कहाँ जाऊं, और दूसरी जो निकृष्ट है, अत्यंत पापी, बहुत विकर्म की है, उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये पांच प्रकार की आत्माएं, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, अपवित्र आत्माएं, अपवित्र में बहुत बड़ी कैटेगरी है, पांच प्रकार की आत्माएं। उसके बाद में पांच सत्ताएं, एक एक सत्ता को देखो, धर्म सत्ता कितना विराट, कितनी विराट सत्ता है। एक ही धर्म सत्ता में, जो धर्म सत्ता भी तमो प्रधान हो चुकी है, गिर गए हैं, उनको उठाना है। धर्म को मानते हैं परंतु धर्म की नहीं मानते। क्रिश्चियन कहते हैं, हिंदू कहते हैं, जैन कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, सिख कहते हैं, पर उसमें क्या हो रहा है वो पता नहीं। जैसे कल भी कहा था, मछली जल में है पर जल ने अभी तक छुआ नहीं है उसको, है ब्रह्मा कुमारी में कई सालों से, पर यहाँ की किसी भी बात ने टच नहीं किया है, अस्पर्शित। अर्थात कोई भी धारणा अंदर घुसी नहीं है, कोई भी बात ऐसी नहीं लगती कि हमारा है, हमारा मधुबन, हमारा यज्ञ, यहाँ की बातें पराई है, जल में है परंतु जल ने नहीं छुआ है, ऐसी भी मछलियां हैं यहाँ पर। तो धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, साइंस, तर्क, लॉजिक, रीजनिंग, प्रूफ, एविडेंस, ये सब चाहिए तो ही मानेंगे, नहीं तो नहीं। पर इन छोटे से ग्रुप के लिए अपना पूरा जीवन वेस्ट करना, कई लोग हैं जिनको इस बातों में इंटरेस्ट है, रिसर्च करना है, वो करना है, ये करना है, ये करना है, कि ये सब करके किसको कन्विंस करेंगे, एक छोटा सा एक ग्रुप है उनको। पर वो करने के लिए पूरा जीवन देना पड़ेगा। पुरुषार्थ रह रहा है बाजू में, मुरलिया रह रही है बाजू में, और उसमें लगे हैं केवल, वो भी सेवा है और जो करना चाहते कर सकते हैं, परंतु देखना ये है प्रायोरिटी क्या है। तो धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, तीसरा राजसत्ता, चौथा प्रकृति की सत्ता, प्रकृति में जो कुछ है उस प्रकृति से जुड़ना। अगला लौकिक ज्ञान की सत्ता, उसमें भी वो सात कैटेगरी सुनाई थी, अप्लाइड साइंस, मैथमेटिक्स, बिजनेस, एस्ट्रोलॉजी, सारी बातें। तो पांच सत्ताओं को सकाश। उसके बाद में अगला पांच प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, टीचर्स, कुमार, कुमारिया, माताएं और अदर कुमार, इनको क्या देंगे? दान नहीं, सहयोग। पुरुषार्थ में लड़खड़ा रहा है, अमृत वेले में स्टेबिलिटी नहीं है, मुरली चिंतन में स्टेबिलिटी नहीं है, मर्यादाओं में स्टेबिलिटी नहीं है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक वो आत्मा है। फिर पांच स्थान ब्राह्मणों के, ऊपर के पांच, नीचे के पांच, मधुबन के स्थान, और फिर पांच प्रकार के बाहर के स्थान, मधुबन के बाहर के ब्राह्मणों के यज्ञ के स्थान, सेंटर, गीता पाठशाला, रिट्रीट सेंटर, चौथा जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो जगह ली है या जगह अभी मिली नहीं है, उस जगह को भी इंतज़ार है, ऐसे वो सारे स्थान, और पांचवा जिस स्थानों पर बहने जाकर सेवा कराती है, वो सेंटर नहीं है, वो यज्ञ की भूमि नहीं है, जहाँ भट्टियाँ होती है, वो सारे स्थान, स्टेज, कुछ भी हो सकता है, गार्डन हो सकता है, कितने गार्डन्स लिए हुए हैं, मैरिज हॉल, मंडप, वो सारे ओपन स्पेस या भट्टियों के लिए जो स्थान लिए जाते हैं, वो सारे। तो पांच ब्राह्मणों के स्थान मधुबन के बाहर के। उसके बाद में अगला पांच विकार, एक एक विकार को भस्म करना है, अमृत वेला। और वो विकारों की लिस्ट भी उस दिन 100 की लिस्ट भेजी थी, जिसको जो विकार ज्यादा परेशान करता है उसके लिए वो नंबर वन शत्रु है। हर एक के लिए काम नंबर वन नहीं है, हर एक की नंबरिंग अलग अलग है। हर एक का फेवरेट, विकारों के फेवरेट हम है, हमारे फेवरेट वो नहीं है। तो पांच विकारों को भस्म करना। अगला क्या बचा? पांच प्रकार की विशेष आत्माएं, उन आत्माओं को इमर्ज करो जिनको हमने बहुत दुख दिया है, और उनको, उनसे माफी मांगो, उन आत्माओं को इमर्ज करो जिन्होंने हमें दुख दिया है, उनको माफ करो। उन आत्माओं को इमर्ज करो जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है, और उनका धन्यवाद। उस विशेष आत्माओं को इमर्ज करो, एक विशेष आत्मा जिससे सबसे ज्यादा कर्म बंधन है, कड़ा हिसाब है, विशेष टीचर जो सब कुछ करने के बाद में भी बंधन जाता नहीं, और लास्ट जो अभी आए ही नहीं है, जो आएंगे आज दिन में, कोई नई माया, कोई नए नए नई आत्मा से मुलाकात होने वाली है जिससे कोई पता नहीं, जिसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, अचानक आ गया और एक नया ही हिसाब किताब चालू हो गया। तो ये पांच प्रकार की विशेष आत्माएं, कौन सा बचा है? वो हो गया ना। तो आज क्या है, मंडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, किया नहीं किया, किया नहीं किया, क्रॉस किया, ये सब चेकलिस्ट, चेकलिस्ट कब तक बनानी है, जब तक वो आदत ना पड़ जाए। 21 दिन बनाओ, 21 दिन के बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक होगा। फिर ऐसे कोई याद नहीं रखेंगे ये किधर से किधर, किधर से किधर और किधर के किधर, अपने आप होते रहेगा। पर शुरुआत में क्या चाहिए, नियमबद्ध चाहिए एक प्रैक्टिस के लिए, ये पांच, ये पांच, ये पांच, ये पांच, ये पांच। फिर धीरे धीरे ये सब की कोई आवश्यकता नहीं। किसी मुरली में बाबा ने कहा, एक समय आएगा तुम अभी बने हो दर्पण, दर्पण में देखो तो रिफ्लेक्ट करता है, पर बाद में बन जाओगे कांच, कांच में सूर्य की किरणें आती है, सब तरफ जाती है, जहां आवश्यकता है वहां जाएगी, इधर जाओ इसको सकाश उसको सकाश ये सब करने की जरूरत ही नहीं, तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, अपने आप सकाश फैलेगी, जिधर जानी है उसको हो जाएगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आज जो करना है वो किस रूप में करना है, देवी के रूप में, क्योंकि आह्वान किसका हो रहा है, देवियों का, भगवती का हो रहा है। भगवान का कम, देवियों का ज्यादा, देवियां प्रकट हो और कोई ना कोई शक्ति दे दे, वरदान दे दे, बुद्धि दे दे, शक्ति दे दे, धन दे दे। तो आज का पहला काम, इसकी एक कमेंट्री बनाना है, एक कमेंट्री तो यहां कराएंगे थोड़ी देर में, सकाश मेडिटेशन, अलग अलग रूपों से देवियों के रूप धारण करके अलग अलग स्थानों पर पहुंचना और आत्माओं को सकाश देना, आथत देना, मदद करना। अब महारथियों की, महागान ज्ञानियों की ये सेवा है, मुरली में कहा है। अंतवाहक शरीर, शक्तियों के रहम के संस्कार इमर्ज होने चाहिए। जैसे स्थूल साधन से जहां चाहो वहां जा सकते हो और दूसरों को भी ले जा सकते हो, तो यहां पर भी दूसरे भी अनुभव करें कि हमने भी देखा। जैसे वो कहानियों में दिखाए थे ना, एक चटाई, अरेबियन नाइट्स में चटाई में बैठता है, चटाई उड़ने लगती है, अलादीन, तो वैसी चटाई में बैठ के लोगों को साथ में बिठाओ और यहां ले आओ कुटिया में कुटिया चटाई, कारपेट, द मैजिकल कारपेट, उनको सैर कराओ। एक तो वो है जो टीचर बन के आना, पंडा बनकर आना और इधर उधर घुमाना, उसमें बड़ी थकान है, सब माताओं को कंट्रोल करके रखना पड़ता है घुमाते समय, पता नहीं कौन सी माता कहाँ गुम हो जाए हम लोग आ रहे थे एक बार, बहुत बहुत पहले, बहुत सारी माताएं थी सेंटर की साथ में, और जब आ रहे थे एक माता गुम हो गई अहमदाबाद से पहले पूरा ढूंढ रहे उसको, पारा के 12 डिब्बे, 3-4 भाई लोग, कहीं नहीं दिख रही। ट्रेन चालू हो गई, बीच में ट्रेन रुकी थी कहीं आनंद या और कहीं, और उसके बाद में फिर वो गुम हो गई। बंधन वाली माता थी, जबरदस्ती लेके आए थे उसको कन्विंस कर करके पूरा ढूंढते ही रहे, ढूंढते ही रहे, इधर से उधर, उधर से उधर। पहला डिब्बा जनरल बोगी में भी उतर उतर के देखा, बीच बीच में गायब आबू रोड उतरे, गायब। शांतिवन पहुंचे, सामने वो थी यहाँ कैसे आ गई वो ट्रेन तो मैं उतरी और ये ट्रेन तो चली गई। फिर पैसे थे नहीं कुछ, दे थे टीटी से मिली, बोले मेरे को आबू जाना है, मुझे पहुंचाओ कैसे भी करके, पैसे पैसे है ही नहीं, वो तो सब चली गई। उसको दूसरे ट्रेन में बिठाया जो ट्रेन हमसे भी पहले पहुंच गई वहां पर सबकी धड़कनें बड़ी हुई थी, कहीं नहीं, आबू रोड आ गया तब भी वो कहीं नहीं। वहां पर भी दूसरी भी ट्रेनों में ढूंढा, वहां पहुंचने के बाद कहीं पर भी नहीं, क्या करे तो ये मेथड अच्छी है सकाश वाली, आत्माओं को बिठाओ और घुमाओ साथ में। इस मुरली में यही कहा है, जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर करते हैं वैसे ही जब चाहो जहां चाहो वहां का अनुभव कर सकते हो। ना सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहां आप पहुंचोगे उन्हों को भी अनुभव होगा कि आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन हुआ। यह है सफलता मूर्त की सिद्धि, ये भी सिद्धि है। जैसे उनकी सिद्धियां होती है, जैसे एक ही समय पर अनेक रूप प्रकट कर लेते हैं, ये कई साधुओं का, योगियों का, सिद्ध पुरुषों का दिखाया गया है। तीन भक्त तीन अलग अलग जगह पर है और योगी महाराज तो एक ही जगह बैठे, तीनों ही एक साथ इसको याद कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? तीन बाबा के बच्चे एक साथ मुश्किल में है, तीनों ही याद कर रहे हैं और बड़े आर्थ भाव से याद कर रहे हैं एकदम भीतर से, तो पहले मदद किसको जाएगी? तीनों को एक साथ जाएगी, एक साथ एट वन टाइम, ये देखा गया है। तो इन्हीं का ही देखा गया है, बाबा ने कहा वैसे तो वो रिवाजी आत्माओं को भी सिद्धि प्राप्त होती है, एक ही समय अनेक स्थानों पर अनेक रूप प्रकट कर सकते, अनुभव करा सकते, वह तो अल्पकाल की सिद्धि है, यह है ज्ञान युक्त सिद्धि। तो तीन आत्मा एक साथ दुखी है, कोई गड्ढे में गिर गया है उसको आप निकाल सकते हो, किसी को बीमार है उसको ठीक कर सकते हो एक साथ, किसी के ऊपर दुश्मन आक्रमण कर रहा है और वो वहां से चिल्ला रहा है माँ बचाओ, तो उसको भी, तो एक साथ तीन काम होंगे। इसके लिए लास्ट संडे की मुरली में था ना, देवियों के लिए 4 हाथ 6 हाथ 8 हाथ 16 हाथ, वो कौन से हाथ है? हमारे शक्तियों के हाथ। तो ऐसे साक्षात्कार, ब्रह्मा के लिए साक्षात्कार, घर बैठे बैठे लोगों ने ब्रह्मा को देख लिया, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, वहां से निकले, रात को दिखा स्वप्न में 5 नंबर की बस पकड़ो, 5 नंबर की बस में बैठे, वहां से वहां गए, वहां एक सत्संग मिलेगा, वहां पहुंचे कोई सत्संग नहीं है, पूछा सत्संग कहाँ है, तो दिखा एक जगह वहां सत्संग चल रहा था, सत्संग के वहां अंदर घुसे तो ब्रह्मा का फोटो दिखा, हाँ दिस ओल्ड मैन, यही था वो बूढ़ा व्यक्ति जो परेशान कर रहा था कई दिनों से इसको ही देखा था तो ऐसे तो ज्ञान में आए विदेश के लोग, जो उनको रात में ही साक्षात्कार हुआ, दिन में अलग अलग दिखा उनको और वो आए, समझा। अब महारथियों को क्या करना है? सिर्फ योग नहीं, सेवा का रूप परिवर्तन करना है। महारथियों का योग वह याद अब स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति हो, तभी महादानी और महाज्ञानी कहेंगे, समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? हम विजयी है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय गले का हार है, ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। तो ये थी पार्ट टू की मुरली, ठीक है। तो साइलेंस की शक्ति आधार डिवाइन इनसाइट, याद रखना इसको। दूसरी मुरली या पहली मुरली, उसमें 7 प्रश्न हैं। विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणा की आवश्यकता है बताओ, इसका नहीं वैसे बताओ। विजयी बनने, विजयी अर्थात सक्सेस, क्या क्या चाहिए? सफलता प्राप्त करनी है कोई भी चीज में, चाहे मैराथन ही क्यों ना हो।
क्या चाहिए?
अच्छा, माता। पीठ में बच्चा और एक हाथ में क्या? दो बच्चा, अरे बाप रे। तो विजयी बनने के लिए क्या क्या चाहिए? गोल, प्लानिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस, और क्या बताया? हार्डवर्क, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन 70% और 30% ये सारी चीजें, ये सब। विजुअलाइजेशन अर्थात मन की आंखों से देख लेना स्वयं को जीतते हुए। विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, समान, ये सब 70% का काम करेगा। पर यही सब कुछ नहीं है, 30% और भी है। तो ये सारा 30% में, और क्या चाहिए? सफल होना है, ऑर्गेनाइज करना है खुद को, तैयारी बहुत अच्छी चाहिए, प्रैक्टिस। क्या चाहिए? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कर कौन सी प्रैक्टिस? परफेक्ट प्रैक्टिस, कुछ भी उल्टी पुल्टी प्रैक्टिस नहीं करना। रॉन्ग प्रैक्टिस अगर करते रहो तो रॉन्ग दिशा में परफेक्शन आएगा। जो कहा था, इसके पहले भी सुनाया था, एक व्यक्ति ऑफिस में गया, वो कहने लगा मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। उसने कहा ठीक है, स्विट्जरलैंड जाना है तो वहां के नियम है, गाड़ी जो चलती है ना राइट साइड से। तो उसने कहा मुझे बुकिंग कर दो स्विट्जरलैंड जाने के बाद, वहां मुझे एक कार चाहिए, खरीदनी नहीं है, बुकिंग की, वो कार मैं उतने दिन 7 दिन यूज करूंगा। तो गया, उसको कहा कि एक बात याद रखना, उधर ड्राइविंग किस तरफ से होती है? राइट। इंडिया में होती है लेफ्ट। तो एक हफ्ते के बाद वो पहुंचता है, पूरा पट्टी विट्टी घायल हुआ। तो ये क्या हुआ? बोलता मैं प्रैक्टिस कर रहा था। किधर? इंडिया में। किधर की? स्विट्जरलैंड की। कौन सी प्रैक्टिस? राइट साइड से गाड़ी चलाने की। तो प्रैक्टिस भी कौन सी? प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, वो राइट प्रैक्टिस, करेक्ट प्रैक्टिस। या नहीं पता है तो अंडर गाइडेंस, जैसे भाषा सीखनी है, पर जिससे भाषा सीखनी है उसको ही नहीं आती है ढंग से। तो हम जो सीखेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है कई बार। एक बार जो गलत सीख लिया वो गलत ही घूमते रहेगी गाड़ी फिर। इसलिए किससे सीखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग, लर्निंग एटीट्यूड, और क्या चाहिए सफलता मूर्त के लिए? नेवर गिव अप, कितनी बार भी हार हो जाए नेवर क्विट। इम्पॉसिबल नहीं समझना, आई एम पॉसिबल, क्विट नहीं करना है उसको, छोड़ नहीं देना है। और कॉन्सेंट्रेशन, बिना कॉन्सेंट्रेशन के तो कुछ प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। इफ आई हैव टू स्टार्ट ऑल माई एजुकेशन ऑल ओवर अगेन, आई विल फर्स्ट मास्टर द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन एट वन स्ट्रोक ग्रैप्स एवरीथिंग। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, यदि मुझे अपना जीवन में सारा शिक्षण फिर से चालू करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कंसंट्रेशन की स्किल को प्राप्त करूंगा और फिर ये सारा जो ज्ञान है एक धक से उसको हब कर लूंगा, कंसंट्रेशन। और क्या चाहिए? अपनी बुद्धि को धार लगाते रहना है। अब्राहम लिंकन ने कहा है, अगर मुझे एक झाड़ दिया गया और इस झाड़ को काटने के लिए मुझे 6 घंटे दिए गए तो मैं 5 घंटे क्या करूंगा? अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाऊंगा, 5 घंटा यही काम, और फिर एक स्ट्रोक लगा दिया और खत्म, झाड़ नीचे। तो अपनी बुद्धि, मेमोरी ट्रेनिंग, इसको कहते हैं मेमोरी ट्रेनिंग। अलग अलग टेक्निक्स है मेमोरी ट्रेनिंग की, वो बहुत जरूरी है मुरली स्टडी में। अलग अलग टेक्निक्स, कभी फ्लो चार्ट मेथड, कभी शेप चार्ट मेथड, कभी IWM मेथड, इमेजिन विद मी मेथड, ये सब हम देख चुके हैं कि वो मैं ही हूं, मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है और मैं कर रहा हूं। ये 3 बातें IWM मेथड में। इतिहास की कोई भी स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज, तो सोचो वो पृथ्वीराज चौहान मैं हूं, मेरी लड़ाई है, तो याद रहेगी वो डेट कब हो रही है, तराइन का युद्ध पहला, युद्ध दूसरा, कौन जीता, क्या जीता, इतिहास की डेट्स याद रखना, ये सब मेमोरी टेक्निक्स है उसमें। अल्फाबेट वाली मेथड, ABCD वाली मेथड्स, निमोनिक वाली मेथड, लोकेशन वाली मेथड, मेमोरी पैलेस की मेथड, ये सब टेक्निक्स है अलग 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 अलग, हैंगर्स की मेथड, अलग 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 मेथड्स को यूज करो, रिवर्स रीडिंग की मेथड, उल्टा पढ़ना, निमोनिक्स और वो एग क्या कहते हैं उसको, एक्रोस्टिक्स की मेथड, कीवर्ड्स निकालने की मेथड, स्पीड रीडिंग की मेथड, फास्ट रीडिंग, किताब पढ़नी है, मुरली पढ़नी है, ऐसा नहीं एक ही मुरली लेके बैठो और शाम हो गई पढ़ते पढ़ते, फास्ट क्विक, इसलिए रीडर्स क्लब रोज रात को, शोर शराबे में साउंड प्रूफ रीडिंग की मेथड, डिस्टरबेंस में भी साउंड प्रूफ करके पढ़ो, मैराथन मुरली मेथड, ये भी हमने देखा था, एक म्यूजिक है उसका, वो मुरली म्यूजिक लगा के रखो, म्यूजिक बीच में स्टॉप होता है, उस समय पर 5 सेंसेस मेडिटेशन करो, अपने सेंसेस की तरफ ध्यान, फिर वापस मुरली में पढ़ना चालू करो, उसको कहते हैं मुरली मैराथन मेथड। ये सारा हमने फरवरी की या सिमरन क्रांति भट्टी में ये 30-40 अलग अलग मेथड्स देखी थी, तो उनको यूज करना सक्सेस के लिए। और सक्सेस के लिए क्या चाहिए? विजयी बनने के लिए नॉलेज, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क और सिंसियरिटी, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट और यूनिटी, लव, उसके प्रति प्रेम चाहिए। जब तक टीचिंग इज नॉट माय प्रोफेशन, इट इज माय पैशन, ऐसा कहा जाता है। हर चीज को क्या बनाना है? अपना पैशन। आपका जो जॉब है चाहे लौकी की क्यों ना हो, पर वो क्या बन जाए? आपका पैशन, उसमें इंटरेस्ट है करने में, अच्छा लगता है वो करो तो, वो रिलैक्सेशन है एक, उसमें व्यक्ति डूबता है, जैसे साइंटिस्ट कैसा डूबा हुआ रहता है अपने रिसर्च में, कुछ याद रहता है उसको, भोजन की कुछ, सब कुछ भूला हुआ रहता है। एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर्स, उनको ये भी नहीं याद रहता है कि सुबह दोपहर खाया था कि नहीं खाया था, अगर उनको पूछो ना नाश्ता किया था कि नहीं किया था, याद ही नहीं, किया तो भी याद नहीं, नहीं किया तो भी याद नहीं, इतना एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं वो रिसर्च में। और क्या चाहिए सफलता के लिए? फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। तो विजयी बनने के लिए निखिलेश भाई, किसकी आवश्यकता है? अलर्ट रहने की आवश्यकता है इस मुरली के आधार से, ठीक है, ये भूलना नहीं। दूसरा प्रश्न, 108 की माला और 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानी क्या है? जो 108 वाले होंगे वो सदा विजयी होंगे और 16,000 वाले वो कभी कभी। तीसरा प्रश्न, कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजयी बन सकते हैं? हम अभी के विजयी नहीं, कल्प कल्प अनेक बार के विजयी है। तो आज क्या करना है, ये प्रश्न लिख के रख देने हैं और फिर उत्तर नहीं लिखने हैं, केवल प्रश्न, 7 प्रश्न, और कल उन प्रश्नों को पढ़ना और याद करने की कोशिश करना क्या उत्तर है। रिकॉल मेथड, इसको कहते हैं इंस्टेंट रिकॉल, एक होता है इंस्टेंट रिकॉल, एक होता है हमने चार प्रकार की रिवीजन बताई थी। पहली रिवीजन कब करनी है? 24 घंटे के अंदर। दूसरी रिवीजन एक हफ्ते के अंदर। तीसरी रिवीजन एक मास के अंदर। चौथी रिवीजन 6 मास के अंदर। जब ये 6 मास ये चारों ही रिवीजन होंगी तो वो जो भी बात पढ़ोगे वो परमानेंट याद रहेगी, छप जाएगी। तो क्या है? कौन सा लक्ष्य रखेंगे? लक्ष्य है हम अभी के विजयी नहीं, कल्प कल्प अनेक बार के विजयी। जो बात अनेक बार की जाती है वो तो स्वभाव संस्कार में स्वतः आ जाती है। जैसे आज की दुनिया में जो बात नहीं करनी चाहिए परंतु वह कर लेते हैं तो कह देते हैं ना कि यह तो मेरे संस्कार बन गया है, ऑटोमेटिक हो जाए वो। तो ये रिवीजन करना भी क्या हो जाए? एक हैबिट, फोर्स ऑफ हैबिट। वो हैबिट हमको कराएगी फिर जबरदस्ती। जैसे कोई अफीम अगर किसी को पिलाई जाए रोज, अफीम की गोलियां रोज उसको, अगर चोट लगी, लोगों को लत कैसे लगाते हैं लोग, जैसे चोट लगी बहुत दर्द हो रहा है, गांव का कोई व्यक्ति उसको कहता है दर्द हो रहा है, दवाइयां ले ली डॉक्टर की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये लो अफीम की दवाइयां खाओ। वो अफीम खाता है, तुरंत दर्द खत्म। दिन भर ऐसा रखता है, सोते रहो सोते रहो, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। किसी गांव को गुलाम बनाना है तो क्या किया जाए? वहां के लोगों को अफीम बांटी जाती है, पर ये बोल के नहीं कि अफीम है या नशा है। उनको धीरे धीरे डिपेंडेंट बनाया जाता है। पहले कम पैसों में, एक आने में एक गोली, कम कम पैसे में देते जाओ तो पूरा गांव धीरे धीरे, छोटे छोटे बच्चों को दे दो, खेल रहे कूद रहे दर्द हो रहा है, गोलियां दे दो, सबको गोलियां दे दो। अगली बार अफीम बेचने वाला फिर उस गांव में जाता है, वो उसको ढूंढते, हमको वो वाली गोली चाहिए जो कल आपने दी थी, बड़ा आनंद आया था। फिर वो दूसरे दिन फिर देता है, फिर तीसरे दिन फिर देता है, फिर कीमत को बढ़ाता है और धीरे धीरे वो गांव पूरा उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। और गांव के सारे लोग जो अब तक काम कर रहे थे, नौजवान, वो क्या कर रहे हैं? लेटे हुए। और सबसे बड़ी बात तो तब होती है जब विड्रॉल सिम्टम, जब वो मिलती नहीं है, फिर झगड़ा करना चालू करते, फिर घर वालों से झगड़ते, पैसे पैसे पैसे। पति अपनी पत्नी को मारता है कि तेरे पैसे दे, तुम जो कमा रही हो मेरे है, मेरा अधिकार है उस पर, लाओ इधर पैसे। वो जब नहीं देती तो मारपीट करता है। क्यों? क्योंकि वो जब तक गोली नहीं मिलती, राजस्थान में बहुत ज्यादा है ये, हमारे पास जितने पेशेंट्स आते इधर गांव के सब एडिक्ट होते हैं अफीम के, डोडा, एक एक लाख रुपए का डोडा वो रखते हैं अपने पास और खाते रहते हैं। खाए तो तन बदन में आराम शांति का अनुभव होता है, पर जब वो नहीं मिलता, ऐसी बेचैनी होती है, ऐसी बेचैनी, तन बदन में आग लगती है, अभी की अभी चाहिए। वहां कोई तर्क कोई लॉजिक कुछ काम नहीं करता है एडिक्ट के सामने। ऐसी तलब उठती है, ऐसी तलब कि पागल हो जाता है व्यक्ति, अभी की अभी चाहिए, और उसके लिए हिंसा भी करने को तैयार हो जाता है। ये ड्रग एडिक्शन हो जाता है। तो जैसे ये निगेटिविटी में एडिक्शन है, क्या पॉजिटिव एडिक्शन भी हो सकता है? प्रभु प्रेम का एडिक्शन, मुरली का एडिक्शन, नहीं पढ़ो तो बेचैनी हो, पढ़ो तो आहा, तन बदन में शांति। तो ये एडिक्शन जो है, ये निगेटिव एडिक्शन तो बहुत है संसार में, ड्रग, चरस, गांजा, अफीम, बहुत बहुत सारा है। ड्रग्स लेते इंजेक्शंस, पूरे हाथों में निशान, कई पेशेंट्स आते हैं उनके हाथों में इंजेक्शंस के निशान होते, उसको देख के ही पता चलता है कि ये ड्रग एडिक्ट है। लेते रहते किसी भी देश को यदि गुलाम बनाना है तो आक्रमण उसके चरित्र पर करना होता है, ऐसा कहा जाता है। और भारत जब जब गुलाम बना, आक्रमणकारियों ने यही सब हथकंडे पैतरे यूज किए। भारत में पहले गुरुकुल सिस्टम था, वो डिस्ट्रॉय करके यहाँ स्कूल सिस्टम आया, जहां कंपटीशन ही कंपटीशन है। व्यक्ति पूरा पोस्ट ग्रेजुएट करके निकलता है पर आता उसको कुछ भी नहीं, उसका MBBS करके निकलता है उसको कुछ आता है क्या? वो बाद में सीखता है सब, जब पेशेंट देखता है तब धीरे धीरे सीखता है। कई सारा हमारा एजुकेशन ऐसा है कि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, फॉल्ट है। मैकुलाय ने अपने स्पीच 1835 के स्पीच कई बार क्लास में सुनाया है, बताया है। 1835 का स्पीच है मैकुलाय का, जो कि गवर्नर था शायद भारत में, जब विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, फैल रही थी धीरे धीरे धीरे। प्लासी का युद्ध हो चुका था 1759 में, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी। मैकुलाय ने कहा है, आई हैव रोम्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल बेगर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया। वो लिखता है कि मैं भारत के कोने कोने में घूमूंगा। कब? 1835 में। मुझे कहीं पर भी एक गरीब इंसान नहीं मिला। इतना संपन्न ये देश है, और यदि हमें भारत को गुलाम बनाना है तो हमें उसके चरित्र, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, उसको, उस पर आक्रमण करना होगा, तो ही हम इसको गुलाम बना सकते हैं। उसका एजुकेशन सिस्टम है, ये जो गुरुकुल सिस्टम है, इसको डिस्ट्रॉय करके नया सिस्टम बनाएंगे, ताकि ये सारे हमारे अंडर हो जाए। तो ये एडिक्शन, ये सब ऐसे काम करता है, नशा ये सारा। तो अगर निगेटिव एडिक्शन है तो वैसे क्या हो जाए, पॉजिटिव एडिक्शन भी बन सकता है। मुरली का एडिक्शन, योग का एडिक्शन, एक अगला प्रश्न वही है याद वाला, तो कौन सा लक्ष्य रखेंगे कि हम ही विजयी थे, हम ही विजयी है। चौथा प्रश्न, व्यर्थ को समर्थ में बनाने की तेज मशीनरी कौन सी है? तो मशीनरी है बुद्धि को पावरफुल बनाना। जब बुद्धि का पावर हाउस से कनेक्शन होगा, तब हमारी बुद्धि शक्तिशाली कब बनेगी? पावर हाउस से उसका कनेक्शन होते ही बुद्धि बहुत पावरफुल बन जाएगी, करंट मिलेगी फिर उसको। यह कनेक्शन टूटता है, लेकिन टूटता नहीं, लेकिन लूज जरूर हो जाता है। पांचवा प्रश्न, ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य कौन सा है? याद नहीं, वैसे बताओ। मुरली में नहीं, मुख्य कर्तव्य तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं। बचे हुए कर्तव्य भी की एक लिस्ट पिछली बार होमवर्क था। जैसे मिश्री मिठास का रूप होती है, वैसे याद स्वरूप ऐसे हो जाओ जो याद हो ना सके। अगर बाप की याद छोड़ी तो बाकी रहा ही क्या। जैसे आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या हो जाता है? मुर्दा। वैसे याद भी अगर निकल जाए तो क्या बन जाओगे? मुर्दा। तो याद ही क्या है, फाउंडेशन है। मेडिटेशन, योग, याद, और ये भी सहज हो जाए। अगला छठवां प्रश्न, दिल्ली यमुना के किनारे पर, यमुना किनारे का गायन क्या है? जैसे अब साकार रूप में, जैसे यमुना किनारे निवास करते, वैसे बुद्धि योग द्वारा स्वयं को इस देह और देह की पुरानी दुनिया की स्मृति से किनारा की हुआ अनुभव करते हो। कलियुगी संगम युगी अर्थात कलियुगी दुनिया से किनारा कर देना। ये कलयुग, हम संगम युग, ये अलग है, हम अलग है। दुनिया वाले जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते, दुनिया वाले जो देख रहे हैं हम नहीं देख सकते, दुनिया वाले जो सोच रहे हैं वो हम नहीं सोच सकते, दुनिया वाले जो खा रहे हैं वो हम नहीं खा सकते। ये अलग, ये अलग, इनका तो लक्ष्य ही अलग है। हाउ कैन वी कंपेयर? सातवां प्रश्न, दशहरे पर सभी रावण का दाह संस्कार करते, लेकिन अब आपको क्या करना है? रावणपन के संस्कार का संस्कार करो। राख अर्थात संकल्प रूप में भी रावण के संस्कार नहीं ले जाना। तो ये हो गया सात प्रश्न, ठीक है? तो प्रश्नों को केवल लिखना है, उत्तर नहीं लिखना है, लिख के छोड़ देना है, और फिर कल, आज उत्तर देख लो, पढ़ो, याद करो, और कल क्या करना है, फिर प्रश्नों को देख के याद करने की कोशिश करना कि क्या उत्तर है, क्या उत्तर है, रिकॉल। दूसरी, इसके दूसरा भाग है टीचर से मुलाकात। तो टीचर्स अर्थात क्या, जो टीचर है वो क्या, टीचर की विशेषताएं सुनाई है। टीचर अर्थात जो नम्रता और महानता का बैलेंस, टीचर अर्थात स्टडी करने वाली, टीचर अर्थात ये नशा नहीं होगा उसको कि मैं टीचर हूं, अर्थात अहंकार ना हो, ये नशा होगा कि मैं टीचर हूं तो रूहानी नशा खत्म हो जाएगा। टीचर अर्थात विश्व कल्याणकारी, टीचर अर्थात निमित्त, टीचर अर्थात वर्ल्ड सर्वेंट, टीचर अर्थात सफलता मूर्त, टीचर अर्थात रोने वाली नहीं, कंप्लेंट करने वाली नहीं, टीचर अर्थात टीचरपन का नशा ना हो, नहीं तो रूहानी नशा खत्म हो जाएगा। अहंकार की बात चल रही है वहां। टीचर अर्थात सदा हर्षित, टीचर अर्थात विश्व कल्याणकारी बाप समान, टीचर अर्थात सफलता मूर्त, टीचर अर्थात बेहद की दृष्टि वाली होगी, सोल कॉन्शियस, सदा समर्थ। तो ये सब टीचर्स की बात है। तो क्या करना है, एक ऐसा क्लाउड बनाना है जिसके अंदर लिखेंगे टीचर, ग्रेट टीचर, और यहाँ पर वो सारी पॉइंट्स डालनी है छोटे छोटे क्लाउड में। टीचर अर्थात क्या, टीचर अर्थात क्या, टीचर अर्थात क्या। तो अभी सभी अलर्ट बैठेंगे, 2-3 मिनट एक मेडिटेशन करेंगे अलग अलग रूपों का। म्यूजिक, मेडिटेशन वाला म्यूजिक है, गया नहीं अभी तक कोई भी मेडिटेशन म्यूजिक। सभी स्थिर, तो सबसे पहले स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थिर करेंगे। शरीर स्थिर, शरीर की सारी हलचल समाप्त, भक्त पुकार रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, हे मां रक्षा करो। कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लेंगे। एक गांव और गांव के बाहर एक बहुत प्राचीन मंदिर, भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पुकार रहे हैं, मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मैं, अष्ट शक्तिधारी, अष्ट भुजाधारी दुर्गा, अपने आप को दुर्गा स्वरूप में देखेंगे। करुणामयी, प्रेममयी, भक्तवत्सल, मैं दुर्गा हूं। चलो एक तीर्थ स्थान की ओर, नदी बह रही है और नदी के तट पर एक दूसरा मंदिर है, महाकाली। भक्त गुणगान कर रहे हैं जय माता दी। विकराल स्वरूप में स्थित मैं महाकाली हूं, सभी आत्माओं के विकारों पर महाकाल का रूप, उनके विकारों को भस्म कर रही। पहुंच जाओ एक स्कूल के प्रांगण में, सुबह का समय है, सभी छात्र आंगन में खड़े हैं, भव्य प्रांगण, करबद्ध सुबह की प्रार्थना हो रही है। विद्या की देवी मैं, श्वेत वस्त्रधारिणी, वीणा वादिनी मां सरस्वती हूं। विद्या की देवी, कला की देवी, के लोग बहुत गरीब हैं, परंतु भक्ति भाव और प्रेम से भरे हैं। दिवाली का त्योहार है, दिए जलाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं, और अचानक मैं महालक्ष्मी स्वरूप धारण कर संध्या काल में गांव में प्रवेश करती हूं। चारों तरफ जगमग जगमग, धन धान्य से सबको भरपूर कर रही हूं। मेरे हस्तों से सोने चांदी सिक्के नीचे गिर रहे हैं। संपूर्ण गांव धनवान हो रहा है। गरीबों की बस्ती है, कई दिनों से बच्चों ने खाना नहीं खाया है, भूखे मर रहे हैं। देवी का आह्वान हो रहा है और मैं अक्षय अन्नपूर्णा माँ के रूप में प्रकट हो रही हूं। सभी आत्माओं को भरपेट भोजन खिला रही हूं। मैं मां अन्नपूर्णा हूं। शहर के बीच बीच मंदिर है जगदम्बा का, जगत जननी जगत माता मैं हूं। मेरे वरदानी हस्त भक्तों को वरदान दे रहे हैं। मैं मां जगदम्बा हूं। दूर पहाड़ों पर स्थित एक मंदिर, सरकरा रास्ता, परंतु ऊंची चट्टानों पर बने उस मंदिर में भी बहुत आकर्षण। जागृत देवी, दूर दूर से भक्त आत्माएं आ रही है, प्यासी आत्माएं आ रही है। मैं माँ वैष्णो, वैष्णो देवी मैं हूं। शहर के बाहर एक छोटा सा मंदिर, विकारों से तप्त आत्माएं, तड़पती आत्माएं आ रही है। मेरे शीतल रूप से उनकी अग्नि शांत हो रही है। मैं मां शीतला हूं। संसारी लोग शहर के बीचों बीच एकत्र हुए हैं। संतोषी मां का त्योहार है। सभी असंतोष और दुखी दुख से भरे हैं। मैं मां संतोषी हूं। अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। शक्ति हूं, आदि शक्ति हूं, देवी हूं। फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम बन चुका है।
21 तारीख को भर्ती पूरी होगी,
22 और 23 दो दिन रिवीजन होगा,
24 तारीख को एग्जाम होगी, 25 तारीख को एग्जाम जो रिवाइज जो एग्जाम हुई उसके आंसर्स का रिवीजन होगा, और 26 से 31 तक 6 दिन की एक भट्टी होगी जिसमें 1976 की सारी मुरलियां कवर हो जाएगी, 77 की
और 78 की नई भट्टी चालू होगी 1 अगस्त से, और वो जो बीच की जो भट्टी होगी हम यहां नहीं रहेंगे उस समय, तो भाई बहने कराएंगे,
और जो नई भट्टी होगी वो 1 तारीख से चालू होगी 78 की, 77 की छोटी उस पर कोई टेस्ट नहीं होगी, तो रोज रोज जो टेस्ट दे रहे उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स, बीच का पीरियड है, नो टेस्ट, ठीक है, ओम शांति।